हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंध नवा अध्याय श्लोक संख्या 18, 19 and 20। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं, भक्तावतार भक्ताख्यं, नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति, गोपेश गोपिका कांता श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनं गौरंगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानो सुते देवी, प्रणमामि हरिप्रिये। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंद नवा अध्याय, जिसका शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। श्लोक नंबर 18। कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भीष्म पितामह कहते हैं, ईशवै भगवान साक्षात् आद्यो नारायणः पुमान्, मोहयन् मायया लोकं गूढश्चरति विश्वेषु, ईशवै भगवान् साक्षात् आद्यो नारायणः पुमान् मोहयन् मायया लोकम् गूढश्चरति विश्वेषु ईशवै भगवान् साक्षात् आद्यो नारायणः पुमान् मोहयन् मायया लोकम् गूढश्चरति विश्वेषु। शब्दात् एष वै, एष मतलब यः, वै मन निश्चय ही, भगवान साक्षात भगवान, साक्षात मतलब मूल, वास्तव में वही भगवान है। आद्य यानी प्रथम, नारायण यानी परमेश्वर जो जल में शयन करते हैं अर्थात कारण दक्षाय विष्णु। पुमान यानी परम भोक्ता, मोहयन यानी मोहित करने वाला, मायया स्वसर्जित शक्ति द्वारा, लोकम ग्रहों को, गूढ़श, गूढ़ मतलब अकल्पनीय, चरति विचरण करता है, वृष्णिषु यानी वृष्णि कुल में। अनुवाद, ये श्री कृष्ण अकल्पनीय आदि भगवान ही है, ये प्रथम नारायण अर्थात परम भोक्ता है, लेकिन ये राजा वृष्णि के वंशजों में हमारी ही तरह विचरण कर रहे हैं और हमें स्वसृजित शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त बनाकर बना रहे हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि ज्ञान प्राप्त करने की वैदिक पद्धति निगमन की विधि है। वैदिक ज्ञान पूर्णतया अधिकारियों से शिष्य परंपरा द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि ज्ञान हमें वैदिक साहित्य से प्राप्त करना चाहिए और ऐसा नहीं कि बस उठा लिया शास्त्र को, ग्रंथ को आप पढ़ो, नहीं, शिष्य परंपरा द्वारा जब हम उसको समझने का प्रयास करते हैं तो ही वो हमें अच्छी तरीके से वास्तविक उसका जो लक्ष्य है उसको समझ पाते हैं। ऐसा ज्ञान कभी मतांध नहीं होता जैसा कि अल्पज्ञ सोचते हैं। ऐसा नहीं कि अपनी बुद्धि से, अपने अंधे विश्वास के बल पर जो कुछ भी उसका अर्थ निकाल दिया, ऐसे नहीं। जो शिष्य परंपरा से हमें हमें ज्ञान मिलता है वही प्रामाणिक होता है। पिता की पहचान को पुष्ट करने की को की अधिकारिणी माता है, वह ऐसे गुह्य ज्ञान की अधिकारिणी होती है, अतएव प्रमाण रूढ़ मूलिक नहीं होता। अर्थात अगर किसी के पिता के बारे में पूछना हो तो वो केवल उसकी माता ही बता सकती। ऐसा नहीं है कि बस आप अंदाजे से नहीं बता सकते कि ये उसका पिता है, ये उसका पिता नहीं, आप उसकी माता ही उसका सही प्रमाण बता सकती है। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय 4.2 में इस सत्य की पुष्टि की गई है और बताया गया है कि विद्या की सम्यक पद्धति उसे अधिकारी से प्राप्त करने में ही है। तो श्रील प्रभुपाद जी गुरु शिष्य परंपरा के विषय में बता रहे हैं, जैसा कि श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि श्रीमद् भगवद गीता 4.2, श्रीमद् भगवद गीता की चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने शिष्य परंपरा के विषय में बताया है कि ये वाला जो ज्ञान है वो मैंने सबसे पहले सूर्य देव को दिया। भगवान कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनोरिक्षवा कवे ब्रवीत, कि सबसे पहले मैंने ये ज्ञान जो है वो सूर्य देव को दिया, सूर्य ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया और इस तरह ये परंपरा से चला। भगवान कहते हैं चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 2 में, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु, कि इसी तरह से जो मैंने ज्ञान दिया है वो ज्ञान परंपरा से ही प्राप्त होता था, यानी कि जितने भी राजऋषि थे वो इसी तरह से सीखते थे। मतलब गुरु अपने शिष्य को सिखाता था, फिर जो शिष्य होता था वो गुरु बनता था, फिर अपने शिष्य को सिखाता था, फिर जो शिष्य है वो, इस तरह से परंपरा से जो परंपरा पद्धति होती है उसी से अधिकारी से प्राप्त करने पर ही हमें वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। इसी पद्धति को विश्वव्यापी सत्य के रूप में स्वीकार किया जाता है, लेकिन व्यर्थ तर्क करने वाला ही इसके विपरीत बोलता है। अब यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कोई ना कोई आपको परंपरा से, अगर प्रमाणिक परंपरा से आप जुड़ते हो तो वहां पर जो आप सीखते हो तो वो प्रमाणिक है, लेकिन अगर अपनी मर्जी से बस चार बंदे बैठ जाएं और भगवान के ऊपर व्याख्या करना शुरू कर दें मत बुद्धि से, तो ऐसे नहीं होता। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं कि उदाहरणार्थ आधुनिक यान आकाश में उड़ते हैं, और जब वैज्ञानिक यह कहते हैं कि वे चंद्रमा के दूसरी ओर यात्रा करते हैं तो लोग इन कथाओं को बिना विचारे स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने आधुनिक विज्ञानियों को प्रमाण यानी अधिकारी मान लिया है। अधिकारी जो कुछ बोलते हैं सामान्य जन उस पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन वैदिक सत्यों के विषय में उन्हें विश्वास ना करने की शिक्षा दी जाती है। यदि वे उसे स्वीकार करते हैं, करते भी हैं, तो उसे वे उसकी भिन्न प्रकार से व्याख्या करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति वैदिक ज्ञान की प्रत्यक्ष अनुभूति करना चाहता है, लेकिन मूर्खतावश वह इससे इनकार करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि गुमराह व्यक्ति जिस एक प्रमाण पर विश्वास कर सकता है वह है वैज्ञानिक, किंतु वह वेदों के प्रमाण को अस्वीकार कर देता है। इसी का परिणाम है कि लोगों का पतन हुआ है। अब देखो शास्त्र जो बोल रहा है, अब यहाँ पर जैसे भीष्म पितामह क्या बता रहे हैं कि एषव भगवान साक्षात, कि जो ये सामने कृष्ण खड़े हैं वो साक्षात भगवान है। अब जब भीष्म पितामह कौन है, 12 महाजनों में से एक है, वो प्रमाण है ना, वो प्रमाण दे रहे हैं कि ये भगवान है, तो लेकिन अगर कोई इस बात को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, जो भी हैं बड़े बड़े, अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझते हैं, लेकिन वो इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं, तो इसी के कारण पतन हो रहा है। अगर सारे जीव जो हैं इस प्रमाण को, वेद के प्रमाण को और ये जो महाजन है उनके प्रमाण को स्वीकार करके भगवान की भक्ति में अपना जीवन बिताएंगे तो पतन नहीं होगा, लेकिन आजकल हर कोई जीव जो है वो अपनी मूर्खता के कारण अपनी मन बुद्धि से अपने कार्य करना शुरू कर देता है, जीवन का एक अलग ध्येय बनाता है, अलग गोल बनाता है, उद्देश्य बनाता है, जिसके कारण उन्हें विनाश की ओर जाना पड़ता है, पतन योनियों में और है ना गिरना पड़ता है। मनुष्य के बाद तो आपको डायरेक्ट से भगवान के पास, ये इतना थोड़ा सा समझो डिस्टेंस रह गया है कृष्ण और मनुष्य के सेंटर में, तो समझो सारे रास्ते कंप्लीट करके आखिरी एक 5 मिनट का रास्ता है, एक छोटा सा ये हमारा देह है, इस मनुष्य शरीर में सिर्फ 100 साल से भी कम, 50-60-70 साल की उम्र में हम यदि थोड़ा सा भी सिंसियर होकर भगवान की भक्ति करेंगे तो डेफिनेटली भगवान कहते हैं कि मैं आपको मिलूंगा, मामे वैश्यति सत्यम दे, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हें अपना लूंगा, मैं तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। लेकिन इस मनुष्य जीवन में, मनुष्य जब ये मनुष्य जीवन हमें मिलता है तो इस जीवन में हम कृष्ण के अतिरिक्त हर किसी वस्तु में ना अट्रैक्शन रखते हैं, हर किसी वस्तु की को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, बहुत कुछ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन क्योंकि शास्त्र को नहीं मानते इसलिए पतन हो जाता है, पुनः हमें 84 लाख योनियों में गिरना पड़ता है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी आगे कह रहे हैं, यहाँ पर एक अधिकारी व्यक्ति श्री कृष्ण को आदि भगवान तथा प्रथम नारायण बता रहा है। आचार्य शंकर जैसे निर्विशेषवादी ने भी अपने भगवत गीता के भाष्य में के प्रारंभ में कहा है कि भगवान नारायण भौतिक सृष्टि से परे हैं। आदिशंकर आचार्य जो कि निर्विशेषवादियों के गुरु हैं, वे अपने गीता भाष्य में बताते हैं, नारायण परो व्यक्तात् अंडम अव्यक्त संभवम अंडस्यांतस् यान्तस्त्वि मे लोका सप्तद्वीपा च मे दिने। यानी कि वो बताते हैं कि नारायण जो भगवान है वे भौतिक सृष्टि से परे हैं। यह ब्रह्मांड एक भौतिक सृष्टि है, किंतु नारायण ऐसी भौतिक साज्जा से परे हैं। यानी कि नारायण जो है वो इस भौतिक सृष्टि से बिल्कुल अलग है, वो इस भौतिक सृष्टि से परे होकर इस भौतिक सृष्टि को चला रहे हैं, इसका सारा कार्यभार अपने ऊपर लिए हुए हैं, लेकिन वो इस सृष्टि का हिस्सा नहीं है। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, भीष्म देव उन 12 महाजनों में से हैं जो दिव्य ज्ञान के नियमों को जानते हैं। अब इस संसार में भगवान को ठीक ठीक जानने वाले केवल 12 लोग हैं, जिन्हें 12 महाजन कहा जाता है। केवल वे ही जानते हैं और कोई नहीं। ये कौन बताते हैं? ये यमराज बताते हैं। जब अजामिल की कथा आएगी ना, उसमें यमराज कहेंगे कि देखो केवल 12 महाजन ही ऐसे हैं। तो महाजनों ये न गतासु पंथा, जो महाजन कहते हैं क्योंकि वो सास उनका ज्ञान जो है वो कंप्लीट है, इसलिए जब वो चीज कोई बताते हैं तो उस पर हमें ब्लाइंड ट्रस्ट करना चाहिए, उस पर हमें फिर तर्क नहीं करना चाहिए, आर्ग्यू नहीं करना चाहिए। जब भीष्म पितामह ने कह दिया है एषवः भगवान साक्षात, क्योंकि भीष्म पितामह 12 महाजन, कौन कौन है 12 महाजन? तो यमराज बताते हैं, स्वयं भव नारद शंभु कुमार कपिलो मुनु प्रहलाद जनक भीष्म बलि व्यास अग्रवयम्। के स्वयंभू अर्थात ब्रह्मा, नारद, शिवजी, चार कुमार, कपिल देव, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, महाराजा बलि, वेद व्यास जी और स्वयं यमराज, ये सब भगवान के अस्तित्व को जानते हैं, भगवान की लीलाओं को समझते हैं और दिव्य ज्ञान के नियमों को जानते हैं। उनके द्वारा श्री कृष्ण को आदि भगवान कहे जाने की पुष्टि निर्विशेषवादी शंकर के द्वारा भी हुई है। अन्य सारे आचार्यों ने भी इस कथन की पुष्टि की है। अतएव श्री कृष्ण को आदि भगवान के रूप में स्वीकार ना करने की कोई संभावना ही नहीं है। इतने सारे जीवों ने जब भगवान के जो वास्तविक ज्ञानी हैं और ज्ञान का अधिकार रखते हैं, जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को भगवान स्वीकार कर लिया है, तो आज का मूर्ख व्यक्ति, जब चार सिर वाला ब्रह्मा जिनके पास चार बुद्धि है वो भी स्वीकार कर रहा है कि ईश्वर परमः कृष्ण, तो फिर आज हम जैसा कीड़ा जिसकी सिर्फ एक ही मस्तिष्क है, वो उसके अंदर भी बुद्धि नहीं है, कचरा भरा हुआ है, वो भी कह रहा है मुझे सबूत दो कि भगवान कृष्ण है। मतलब कह दिया उन्होंने, ब्रह्मा ने कह दिया, शिव ने कह दिया, नारद ने कह दिया, हर जो वास्तव में ज्ञानी है उन्होंने बता दिया है कि एषवः भगवान साक्षात, कृष्ण ही साक्षात भगवान, वेद व्यास जी कहते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तब उन्होंने कह दिया तो हमें उनकी बात को स्वीकार करना चाहिए, ना कि अपनी कचरा बुद्धि से अपनी मर्जी का कोई कचरा भगवान बनाना चाहिए। भीष्म देव कहते हैं कि वे प्रथम नारायण हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम 10.14.14 में ब्रह्मा जी द्वारा भी की गई है। कृष्ण प्रथम नारायण हैं, वैकुंठ में असंख्य नारायण हैं और वे सभी एक ही भगवान हैं और आदि भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण अंश माने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विस्तार बलदेव के रूप में होता है और बलदेव अनेक अन्य रूपों में यथा शंकरषण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव, नारायण, पुरुष, राम तथा नरसिंह में विस्तार करते हैं। ये सारे विस्तार एक ही विष्णु तत्व है और श्री कृष्ण इन समस्त पूर्ण अंशों के आदि स्रोत है। अतएव वे प्रत्यक्ष भगवान हैं। वे भौतिक जगत के सृष्टा हैं और नारायण रूप में विख्यात समस्त वैकुंठों के अधिष्ठाता देव हैं। अतएव मनुष्यों के बीच में उनका विचरण करना मोह ही है। भगवान श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं कि मूर्ख लोग उनकी गतिविधियों की जटिलताओं को जाने बिना उन्हें मनुष्य मान बैठते हैं। 9.11 में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि अवजानन्ति मा मूढ़ा मानुषिन्तनुमाश्रितं परं भावं अजानन्तो मम भूत महेश्वरम्। कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतार लेता हूँ तो जो मूर्ख हैं वो मेरी वास्तविक स्थिति को नहीं जानते हैं और वे समझते हैं कि मैं कोई साधारण व्यक्ति हूँ, इसलिए वे मेरा उपहास करते हैं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान की गतिविधियों को समझना किसी मूर्ख के बस की बात नहीं है, उसके लिए वास्तविक ज्ञानी की शरण में जाएंगे और वास्तविक परंपरा से जब जुड़ेंगे तो हमें भगवान के सत्य के विषय में पता चलेगा। श्री कृष्ण के विषय में मोह का कारण उनकी अंतरंगा तथा बहिरंगा नाम की दो शक्तियां हैं। तटस्था नामक एक तीसरी शक्ति है, तटस्था नामक एक तीसरी शक्ति पर प्रभाव है। अब देखो, हम तटस्था शक्ति हैं, जीव जो है वो तटस्था शक्ति है, और भगवान की अंतरंग शक्ति भगवान है। भगवान का नाम, भगवान का गुण, भगवान की लीलाएं, और भगवान की बहिरंग शक्ति ये माया है। तो तटस्था शक्ति क्या करती है, वो मोहित होती है इन दोनों के कारण, क्योंकि भगवान के विषय में मोह करा देती है ये भगवान की दोनों शक्तियां जीव को। जीव उनकी तटस्थ शक्ति है, शक्ति के विस्तार अंश हैं, अतएव वे कभी अंतरंग शक्ति द्वारा मोहग्रस्त हो जाते हैं तो कभी बहिरंग शक्ति द्वारा। अपनी अंतरंग शक्ति के मोह से श्री कृष्ण असंख्य नारायणों में अपना विस्तार करते हैं और दिव्य लोक में जीवों से दिव्यमयी सेवा का आदान प्रदान स्वीकार करते हैं। वे अपनी बहिरंग शक्ति के विस्तार से भौतिक जगत में मनुष्यों, पशुओं या देवताओं के मध्य भिन्न भिन्न योनियों में जीवों के साथ विस्मृत संबंध की पुनः स्थापना के लिए अवतरित होते हैं। अब देखो, भगवान अपनी अंतरंग शक्ति में क्या करते हैं, असंख्य नारायण के से अपना विस्तार कर देते हैं, और दिव्य लोक में जब जीव जाता है तो दिव्यमय सेवा का आदान प्रदान करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही वैकुंठ है, बहुत सारे वैकुंठ हैं, तो जिसका जैसा जैसा भाव होता है उसके अनुसार अलग अलग उसको मुक्ति मिलती है। जैसे कोई किसी को सालोक्य, सारूप्य, साष्टी और सारूप्य ये सब मुक्तियाँ मिलती हैं, तो वो वहाँ पर जाके भगवान के साथ नारायण के भिन्न भिन्न स्वरूपों के साथ आदान प्रदान करते हैं। और भौतिक शक्ति में क्या होता है, भगवान इस भौतिक शक्ति के अंदर आते हैं, कभी पशु बनकर अवतार लेते हैं, कभी मनुष्य बनकर अवतार लेते हैं, कभी देवता के रूप में, कभी ऋषि के रूप में भगवान विभिन्न अवतार लेते हैं भौतिक जगत में, और विभिन्न योनियों में जीवों के साथ विस्मृत संबंध की पुनः स्थापना करते हैं, और फिर जीवों को ये भुला देते हैं कि मैं वास्तव में भगवान हूँ, स्थापना के लिए वितरित होते हैं। किंतु भीष्म जैसे महाजन भगवत कृपा से उनके मोह से बच जाते हैं। कुछ महाजन हैं जो वास्तव में भगवान के अस्तित्व को जानते हैं, भगवान की लीलाओं को, भगवान की रहस्यों को, भगवान के जितने शाश्वत कार्य हैं उनके रहस्यों को जानते हैं, तो फिर वो मोहित नहीं होते, बाकी सब मोहित हो जाते हैं भगवान की लीलाओं से। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरु तु वाचालं पंगुं लंघयति किरं यत् कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारणम्। जैसे कि कल भीष्म पितामह ने बताया कि नह्यस्य कहि चित्राजन पुमान वेद विदित्सितं यद्वजिज्ञासया युक्ता मोहयन्ति कवयोपि। कि भगवान की लीलाओं को कोई भी जान नहीं सकता है, मतलब कृष्ण को दिखा कर कह रहे थे कि ये जो लीलाएं करते ना, कोई किसी की बुद्धि में ये बात समझ में नहीं आती है, चाहे वो कितना ही बड़ा बड़ा ज्ञानी हो, वेदवान हो, लेकिन फिर भी भगवान के कार्यों को, भगवान की लीलाओं को, भगवान की क्षमता को वो समझ नहीं सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके साथ जो भी हुआ वो भगवान की इच्छा से हुआ है, इसलिए आप क्योंकि समर्थ हो, आप अधिकारी हो, तो क्या करो, तस्यानुविहितो नाथा नाथताहि प्रजा प्रभु। आप क्या करो, इनका अनुगामी होकर, इनके आदेशों का पालन करके आप प्रजा की रक्षा करो, प्रजा का पालन करो। तो मान लीजिए युधिष्ठिर महाराज पूछे कि इनके अनुगामी क्यों हो जाए, कृष्ण के ऊपर आप इतना जोर क्यों दे रहे हो, कृष्ण में ऐसा क्या है कि हम उनके ही आदेश का पालन करें। अब भीष्म पितामह अपने मन के भावों को रोक नहीं पा रहे हैं, यहाँ पर समस्त ऋषि विराजमान हैं, समस्त राज ऋषि, समस्त देव ऋषि, समस्त ब्रह्म ऋषि आके यहाँ पर विराजमान हैं, परशुराम भगवान यहाँ पर हैं, यहाँ पर पर्वत, नारद, वेद व्यास जी, सुखदेव गोस्वामी, इतने सारे ऋषि मुनि की सभा है, और वहां पर भीष्म पितामह कह रहे हैं, एष भय भगवान साक्षात, ये जो सामने खड़े ना तुम्हारे, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये श्री कृष्ण साक्षात भगवान है। साक्षात भगवान का मतलब जानते हो क्या होता है, कि दूसरे जितने भी भगवत स्वरूप हैं, वो श्री कृष्ण पर आश्रित हैं। कृष्ण ने ही स्वयं को अन्य भगवत स्वरूपों में प्रकट किया है। तो जिन भगवत्ता रखने वाले, मतलब जो अन्य जो विष्णु स्वरूप हैं या जो जितने भी भगवान के अवतार हैं, वो सब किस पर आश्रित हैं, भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित है। तो जिनकी भगवत्ता अन्यों पर निर्भर नहीं करती है, वो साक्षात भगवान है। यानी कृष्ण किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं करते, कृष्ण स्वयं भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो इस बात को यहाँ पर भीष्म पितामह बता रहे हैं, एषवै भगवान साक्षात आद्यो, वो आदि है, उनसे प्रथम कोई नहीं था, और आद्यो नारायण, यानी कि वो कारण दक्षाय विष्णु भी स्वयं ही है, उन्हीं के द्वारा दूसरे जो जितने भी अवतार होते हैं वो इनसे होते हैं, आद्यो नारायण पुमान, वास्तविक जो परम भोक्ता है वो है भगवान श्री कृष्ण। तो यहाँ ये प्रश्न उठता है, फिर ऐसा क्यों लगता है कि ये साधारण है, मतलब ऐसे कार्य करते हैं उन, तो फिर यहाँ पर बता रहे मोहयन माया लोकम, कि वो अपने कार्यों से समस्त लोगों को, जितने भी उनकी माया इतनी प्रबल है कि कोई भी उसको समझ नहीं पाता, सारे लोग मोहयन माया लोकम, सारे लोग भ्रमित हो जाते हैं उनकी माया से, इतने सारे ऋषि मुनि, इतने सारे ब्रह्म ऋषि, इतने सारे जितने भी ऋषि आए थे, अपने सारे शिष्यों को भी लेकर आए थे साथ में, तो जब उन्होंने सुना होगा कि जो सामने खड़े हैं कृष्ण, एषवै भगवान साक्षात, तो समस्त ऋषियों के समक्ष ये ऐसा बोलना वास्तव में बहुत बड़ी बात थी। कुछ ऋषि मुनि जो नए नए शिष्य बने होंगे, वो तो सुनकर चकित हो गए होंगे ना, कि अरे ये कृष्ण, ये भगवान है, साक्षात भगवान इस संसार में हमारे सामने खड़े। वैसे कृष्ण का तेज तो दिख ही रहा था, परंतु जो कृष्ण की लीला थी ना, वो भ्रमित कर रही, जैसे ये बता रहे हैं भीष्म पितामह, मोहयन माया लोकम, वो भ्रम पैदा कर देते हैं। वो जो कार्य करते हैं ना, अब क्या कार्य कैसे करते हैं, भगवान है लेकिन भीष्म पितामह के चरण छू रहे हैं, भीष्म पितामह के चरणों के पास हाथ जोड़ कर बैठे हुए हैं, भीष्म पितामह जो कह रहे हैं उनको इतना ध्यान से सुन रहे हैं, अर्जुन का रथ चला कर लेकर आते हैं, सारथी बन के आते हैं, ये लीला बिल्कुल विपरीत है, भगवान है ना वो, तो भगवान कार्य ऐसे कर रहे हैं कि भगवान ऐसे माइंड में आता ही नहीं कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं, साक्षात भगवान ऐसा क्यों करेगा, ऐसा हाथ जोड़ के बैठना, किसी का सारथी बनना। तो यहाँ पर जो भीष्म पितामह, वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं और भगवान स्वयं उस भीष्म पितामह के सामने जाते हैं, उनसे कहते हैं प्रणाम पितामह, उनको प्रणाम करते हैं। तो हो सकता है वहां पर जो बैठे हुए इतने सारे ऋषि मुनि, उनके शिष्यों के कुछ शिष्यों के मन में ऐसा डाउट आ रहा हो, मतलब बड़े बड़े जो ऋषि मुनि थे, जो वास्तव में विद्वान थे, वो तो जानते थे कि वास्तव में ये भगवान है, पर वहां लाखों लोग आए थे और भीष्म पितामह सब के सामने उंगली से दिखा दिखा कर कह रहे हैं, ईश्वर भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमा, ये कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ईश्वर साक्षात भगवान, ये साक्षात भगवान है, आदि नारायण है। इनसे ही समग्र अन्य सृष्टि के जितने भी अवतार होते हैं वो आते हैं। तो अगर कोई उन्हें नहीं पहचान रहा तो ये उनकी माया ही है जिसके कारण वो आच्छादित रहते हैं। मोहयन मायया लोकम गूढ़शरति विश्विषु ऋष्णिषु, यानी कि वो फिर यहाँ संसार में आते हैं, ऋष्णि कुल में जन्म लेते हैं। और अगर उनसे कोई पूछता, जब भगवान श्री कृष्ण संसार में होते थे ना, वो भगवान है ना, लेकिन फिर भी जब उनसे कोई पूछता था कि आप कौन हो, तो कृष्ण कभी भी ऐसा नहीं बोलते थे कि मैं भगवान हूँ, कभी भी नहीं बोलते थे कि मैं भगवान हूँ। एक बार राजा मुचकंद के पास जब वो गए थे, तब राजा मुचकंद ने भगवान से पूछा था आप कौन हो, तब कृष्ण ने कहा मैं वासुदेव का पुत्र हूँ। तो बोला आपका नाम क्या है, बोला मेरा नाम, वैसे तो मैं वसुदेव का पुत्र हूँ, मुझे लोग वासुदेव भी बोलते हैं, लेकिन मेरे इतने नाम है कि गिने नहीं जा सकते। मतलब भगवान जो है वो कृष्ण भगवान के पास में ही होते थे, अपनी वास्तविकता को भूलते नहीं थे, लेकिन वो व्यवहार इतना सरल करते थे कि भ्रमित हो जाता था। और फिर वो भगवान की पास में बोलते थे कि कोई यदि इस पूरी पृथ्वी को पीस करके आटा बना करके गिनना चालू करे, मतलब सारे जितने विद्वान हैं, जितने बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जो अच्छी काउंटिंग कर सकते हैं, मतलब सारे 33 करोड़ देवी देवता अपना अपना कंप्यूटर लगाकर यदि गिनने का प्रयास करें, ब्रह्मा शिव नारद शेष ये सब, हो सकता है कि पृथ्वी के समस्त कणों को गिन लें। यद्यपि संभव नहीं है ये कि पृथ्वी को, पूरी पृथ्वी को पूरा बना दिया जाए और उस बूरे को काउंट किया जाए एक एक के कितने उसके पीस हुए हैं छोटे छोटे, नहीं सब गिनना नहीं है, लेकिन भगवान कहते हो सकता है कि गिन ले, पॉसिबल है, लेकिन मेरे जन्म कर्म को कोई नहीं गिन सकता। तो इस तरह से जब मुचकंद महाराज सुनते हैं तो परेशान होते हैं, बोलते हैं लेकिन फिर भी आपको है ना विचलित होने की जरूरत नहीं है, आप वर्तमान समय में यदि मेरा एड्रेस जानना चाहते हैं तो मेरा घर मथुरा में है, मैं वसुदेव का पुत्र हूँ और मैं वहीं, वो वसुदेव मेरे पिताजी हैं और मैं वहीं रहता हूँ, अगर आपको कभी आना हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इतना सुनकर मुचकंद महाराज हंस देते हैं और इतनी स्तुति करते हैं भगवान की, वो समझ जाते हैं कि ये तो साक्षात मेरे इष्ट देव हैं। तो कृष्ण की लीला इतनी मोहित कर देने वाली है कि द्वापर युग में जितने भी लोग होते थे वो भ्रमित ही रहते थे, कृष्ण को भगवान बहुत ही कम लोग समझते थे, भगवान अपनी माया से सबको भ्रमित कर देते थे। तो लेकिन समय समय पर महान लोगों की जब सभा लगती थी तो इस बात की घोषणा होती थी कि कृष्ण भगवान है, और स्वयं आज भीष्म पितामह बता रहे हैं कि ईश्वर भगवान सा, ये कृष्ण जो है वो साक्षात भगवान है, और इससे पहले भी, आज भी संसार के समस्त ऋषि मुनि, समस्त बड़े बड़े विद्वान यहाँ पर जमा हैं, और इससे पहले जब राजसूय यज्ञ किया था युधिष्ठिर ने, उस समय भी संसार के सारे विद्वान व्यक्ति वहां पर जमा थे, और उस समय भी यह घोषणा की थी सहदेव जी ने, सबसे पहली पूजा इन्हीं की होनी चाहिए, वास्तव में कृष्ण भगवान है और कृष्ण ही अग्र पूजा के योग्य है। उस समय भी नारद थे, वेद व्यास जी थे, सब थे, परंतु उनके होते हुए भी अग्र पूजा कृष्ण की गई थी। मतलब ये क्लियर हो गया था कि कृष्ण भगवान है। और आज भी भीष्म पितामह एकदम क्लियर स्टेटमेंट देते हैं, एषव है साक्षात भगवान, भगवान है साक्षात, और आदियो नारायण आदि नारायण है। वास्तव में इस ज्ञान की आवश्यकता है, इस ज्ञान की इस संसार में बहुत आवश्यकता है कि कृष्ण के विषय में बताया जाए जीवों को, क्योंकि कृष्ण के विषय में आज भी बहुत संदेह है लोगों को, और कृष्ण को भगवान नहीं मानते। और आजकल लोग इतने बुद्धू हो गए हैं, इतने उनकी अक्ल मारी गई है कि किसी साधारण आदमी को भगवान कहकर उसकी शरण में आ जाते हैं और कहते हैं कि ये भगवान है, ये भगवान है, वो भगवान है, और उनसे उनको कोई आशीर्वाद प्राप्त होता है। मतलब किसी को पुत्र पैदा होता है, किसी को धन मिलता है, और बोलते हैं इनके आशीर्वाद से मिला है हमें। वास्तव में जो उनकी मनुष्य उन मनुष्यों के जो भाग्य में लिखा होता है वही पढ़ के बता देते हैं। किसी किसी को भाग्य पढ़ना आ जाता है, वो पढ़ के बता देते हैं आपको मिलने वाला है। तो वो मिलने वाला उसने दिया थोड़ा है, वो तो आपके नसीब का था, आपको मिल गया, तो इसमें उसकी क्या करामत है? उसने तो खाली लिखा हुआ बता दिया कि भाई आपको ये मिलने वाला है, तो भगवान कैसे हो सकता है? वो दे नहीं सकता। वास्तव में यदि कोई समर्थ है, कोई दे सकता है, तो वो केवल कृष्ण है। अगर उसके अंदर कोई शक्ति है तो जाके उससे पूछो कि आप अपने को क्यों नहीं मृत्यु से बचा देते, आप अपने को क्यों नहीं बूढ़ा होने से बचा देते। बूढ़ा होना और मृत्यु तो दूर की बात, वो अपने आप को बीमार होने से नहीं बचा देते, बचा सकते हैं। आजकल जो मूर्ख लोग जिनको भगवान कहते हैं, वो पता लगता है कि कल किसी डॉक्टर की लाइन में खड़े हैं और जाके डॉक्टर को बोलते हैं, डॉक्टर साहब मैं बहुत परेशान हूँ, कल रात से मेरे दांत में दर्द हो रहा है। तो वो भगवान जो कहलाते हैं वो डॉक्टर को कहते हैं कि कुछ ऐसी दवा दीजिए कि मेरा दांत सही हो जाए। तो डॉक्टर साहब कहते हैं, देखिए भगवान जी, आपका जो दांत है वो पूरी तरह से सड़ गया है, अब इसको निकलवाना पड़ेगा। यानी कि भगवान का दांत अभी निकाला जाएगा क्योंकि अभी भगवान का दांत सड़ गया है। मतलब भगवान का शरीर भौतिक नहीं होता है, भगवान जब संसार में अवतार लेते हैं तो अपने वास्तविक शरीर, उनका कोई शरीर नहीं होता, वो पूरे के पूरे परमात्मा रूप में आते हैं। उनका शरीर ना कभी बूढ़ा होता है, ना कभी उनका शरीर बीमार होता है, और ना ही कभी उनके शरीर की मृत्यु होती है। लेकिन आज हम देखते हैं पागल लोग हैं सारे, किसी भी साधारण व्यक्ति को भगवान बना देते हैं। लेकिन जो शास्त्र कहता है कि भगवान केवल कृष्ण है, एषव भगवान साक्षात, वास्तविक भगवान केवल कृष्ण है, इसको नहीं जानते। वाह, कितना बुद्धू मनुष्य हो गया आजकल का कि वो शास्त्र की बात को, शास्त्र के प्रमाण को नहीं मानता। इसे श्री रूप गोपाल जी ने बोला कि हमें वास्तविक प्रमाण को जानना चाहिए। जिस तरह केवल माता बता सकती है कि आपके पिता कौन है, उसी तरह केवल शास्त्र हमें बता सकता है कि वास्तविक भगवान को। भगवान कोई अनुमान लगाने की चीज थोड़े है, अपनी मर्जी से किसी को भी भगवान बना सकते, ऐसे थोड़े होता है। भगवान तो जो है वो कभी नहीं बदलता, चाहे वो कुछ भी करे। वो अपनी माया से चाहे कितना ही भ्रमा रहा है, चाहे वो घर घरों में जाकर मक्खन चोरी करता है, या चाहे अर्जुन का सारथी बनता है, भीष्म पितामह को प्रणाम करता है, या राजसूय यज्ञ में जूठे पत्तल उठाता है, वो भगवान ही है। वो चाहे कुछ भी करें, उनकी भगवत्ता में कमी नहीं होती हो सकती है। भगवान है वास्तव में केवल कृष्ण और कोई नहीं, इतना मान कर जीना है मनुष्य को। और ये भीष्म पितामह का प्रवचन, किसी कोने में बैठकर उन्होंने अपनी ऑफिस में बैठकर ये मीटिंग नहीं रखी थी कि हाँ कृष्ण भगवान है। ये प्रवचन हो रहा है सभी ऋषि मुनियों, जहाँ पर संसार के समस्त बड़े बड़े विद्वान, नारद, पर्वत, आप सुन के आए ना पहले, कौन कौन बैठे वहां पर? पर्वतो नारदो धाम्यो भगवान बादरायण बृहदैश्व भरद्वाज सशिष्यो रेणुकासुत वशिष्ठ इंद्र प्रमदा स्त्रतोग्रत समर्दोषित कक्षिवान गौतमो क्षत्र कौशिको सुदर्शन। इतने सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पर आए थे और उन सब ऋषियों के सेंटर में भीष्म पितामह बता रहे हैं, ईश्वर भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान। और इनको हम समझ नहीं सकते, क्यों? क्योंकि मोहयन माया या लोकम, अपनी माया के द्वारा सबको मोहित कर देते हैं। गुड़श्च रति विष्णुषु, और विष्णु कुल में छिप करके रहते हैं, यानी किसी का भतीजा बनते हैं, किसी का पुत्र बनते हैं, किसी का क्या बनते हैं, किसी का भाई बनते हैं, और ऐसी लीला करते हैं कि किसी को समझ में नहीं आता कि ये भगवान है। तो जैसे श्लोक नंबर 16 में भीष्म पितामह ने बताया था, न यस्य कस्यचित् राजन् पुमान् वेदविदित् सतम् यद्व जिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयो, कि उनको कोई जानता नहीं, जान नहीं सकता, वो जो लीला करते हैं वो उनके वास्तविकता को कोई जान नहीं सकता है। तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज के मन में ऐसा सोचा, यानी कि उनको ये बात अच्छी नहीं लगी कि इतने बड़े भगवान है संसार के, लेकिन उनको कोई जानता ही नहीं, फिर क्या वैल्यू है ना? भगवान तो सबको जानना चाहिए ना उनके विषय में, अभी उनको कोई जानता ही नहीं तो उनकी क्या वैल्यू, इस भगवान का क्या अर्थ है जिसको कोई इसको जान ही नहीं रहा है। तब भीष्म पितामह कहते हैं, अस्यानुभावं भगवान वेद कुवियतमं शिव देवर्षि नारद साक्षात भगवान कपिलो नृप, अस्यानुभावं भगवान वेद गुह्यतमं शिव देवर्षि नारद साक्षात भगवान कपिलो नृप, अस्यानुभावं भगवान वेद गुह्यतमं शिव देवर्षि नारद साक्षात भगवान कपिलो नृप। अब भीष्म पितामह बता रहे हैं अस्यानुभावम, यानी कि इनकी जो महिमा है उनको हर कोई नहीं जानता। वेद गुह्यतमम शिव, ये भगवान है वो बहुत ही सीक्रेट बात है, बहुत ही गुह्य बात है, और वो कौन जानता है? शिव जी जानते हैं। शिव जी को पता है, शिव जी उनकी महिमा को, उनकी लीला के रहस्य को भगवान शिव जानते हैं। कृष्ण को जानने वाले में सबसे श्रेष्ठ है भगवान शिव, इसलिए उनका पहले पहले नाम दिया है। वो पूरा पूरा भगवान श्री कृष्ण को जानते हैं। और कौन जानते हैं? तो वो कहते हैं देवर्षि नारद साक्षात, देवर्षि नारद उनको जानते हैं, और भगवान कपिलो नृप, और भगवान कपिल मुनि उनको जानते हैं। यानी कि तीन के नाम गिना रहे हैं, शिव जी, देवर्षि नारद और कपिल मुनि उनको जानते हैं। और इसका मतलब है यदि कोई उनकी परंपरा में आएगा, जैसे हमारी परंपरा क्या है, ब्रह्मा नारद गौड़िया संप्रदाय, तो जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने नारद को दिया, नारद ने वेद व्यास जी को दिया, ऐसे करते 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 श्रील प्रभुपाद जी तक पहुंचा, और श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा हम अगर समझ रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो समझो वो एज इट इज है। अब जितना श्रील प्रभुपाद जी ने समझा वो हमें समझा रहे हैं, तो हम अगर वो चीज किसी को समझा रहे हैं तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। यानी कि उनकी परंपरा से अगर कोई जानता है तो वो सही सही समझ सकता है। उसी तरह से जो शिव जी की परंपरा से, यानी रुद्र संप्रदाय से आता है या कपिल परंपरा से आता है, तो वो भगवान को समझ सकते हैं, साधारण प्राणियों को समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर वो भीष्म पितामह बता रहे हैं कि भगवान को साधारण लोग नहीं समझ सकते, लेकिन जो वाकई में स्पेशल है, जैसे शिव जी, नारद मुनि, कपिल मुनि, ये सब भगवान को जानते हैं। अनुवाद, हे राजन, शिव जी, देवर्ष नारद तथा भगवान के अवतार कपिल, ये सभी प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा भगवान की महिमा के विषय में अत्यंत गोपनीय जानकारी रखते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान के सारे शुद्ध भक्त भाव हैं, अर्थात ऐसे व्यक्ति हैं जो दिव्य प्रेममयी सेवा के द्वारा भगवान की महिमा को जान सकते हैं। यानी कि भगवान को हम बुद्धि से नहीं जानते हैं, बल्कि भगवान को जानने के लिए भगवान की भगवान से प्रेम करेंगे ना, तो भगवान स्वयं सोई जाने जाको जाने जनाए वो देहे जना, यानी कि जो भी उस जिसको भगवान सिर्फ उसी को समझ में आते हैं जिसको भगवान स्वयं समझना चाहते हैं कि वो मुझे समझ जाए, यानी जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है। और कृपा कब होती है? जब हम भगवान से प्रेम करते हैं। भगवान को बुद्धि से नहीं प्रेम से समझा जा सकता है। जब भगवान हमारे प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं तब भगवान स्वयं हमारे सामने अपने आप को प्रकट करते हैं, तभी हम उनको समझ सकते हैं। तो जिस प्रकार भगवान के पूर्ण रूप के असंख्य विस्तार अंश हैं, उसी प्रकार भगवान के असंख्य शुद्ध भक्त भी हैं, जो विभिन्न रसों में सेवा का आदान प्रदान करने में लगे रहते हैं। सामान्यतः भगवान में के 12 महान भक्त महाजन हैं, जिनके नाम हैं ब्रह्मा, नारद, शिव, कुमारगण, कपिला, मनु, प्रहलाद, भीष्म, जनक, शुकदेव गोस्वामी, बलि महाराज तथा यमराज। यद्यपि भीष्म देव इनमें से एक हैं, लेकिन उन्होंने केवल 3 मुख्य नामों का उल्लेख किया है जो भगवान की महिमा से अवगत हैं। आधुनिक युग में महान आचार्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कथन है कि अनुभव या भगवान की महिमा सर्वप्रथम आनंद विभोर भक्त द्वारा अनुभव की जाती है। केवल जो वास्तव में आनंद से भगवान की भक्ति करते हैं वो ही भगवान की महिमा को जान सकते हैं। जो प्रस्वेद, संप, रुद्र, रुदन, शारीरिक उद्गारों आदि के लक्षणों द्वारा प्रकट होती है, जैसे चैतन्य महाप्रभु के अंदर अष्ट विकार आते थे, वैसे विकार जब वास्तव में प्रेमा भक्ति होती है ना, तब प्रेमा भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान उस जीव को अपने विषय में संपूर्ण ज्ञान प्रदान करते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम ये नमा उपयान्ति, जो कंटिन्यूस भगवान के सतत कीर्तन में लगा रहता है तो भगवान अपने आप को उसके सामने प्रकट करते हैं और उसके अंदर ये सारे विकार उत्पन्न होते हैं और भगवान की महिमा के लगातार ज्ञान से इन अनुभवों में शुद्धि होती है, वृद्धि होती है, तो इनके प्रेम और भाव जो है बढ़ते रहते हैं। भावों के ऐसे ज्ञान का आदान प्रदान यशोदा तथा भगवान के मध्य भगवान को रस्सी से बांधना तथा सारथी कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य प्रेमवश रथ हांकने से होता है, यानी कि फिर इतना प्रेम हो जाता है कि फिर लेवल का पता नहीं चलता कि वो भगवान है। बस प्रेम जो है वो ही एकमात्र हमारे सेंटर में होता है और कुछ नहीं होता है। भगवान और भक्त का भाव भी खत्म हो जाता है, सिर्फ प्रेम का एक रिश्ता रहता है। तो चाहे वात्सल्य हो चाहे सखा भाव हो, लेकिन उसमें वो सिर्फ वही रस बाकी रहता है, वो स्टेटस खत्म हो जाता है। तथा सारथी कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य प्रेम वश रथ हांकने से होता है। ये महिमाएं अपने भक्तों के वशीभूत होकर प्रकट की जाती हैं और भगवान की महिमा का यह एक अन्य गुण है। शुकदेव गोस्वामी तथा कुमारगण दिव्य पद पर स्थित होकर भी भाव के अन्य गुण द्वारा परिवर्तित होकर भगवान के शुद्ध भक्त हो गए। मतलब शुकदेव गोस्वामी और कुमारगण जो थे वो शुरू में भगवान के भक्त नहीं थे, वो दिव्य स्थिति पर थे, दिव्य पद पर थे, लेकिन वो ज्ञानी तो थे बट भगवान के भक्त नहीं थे। लेकिन जब भगवान के इन भावों के विषय में सुना, भगवान के इस प्रेम के आदान प्रदान के विषय में सुना, भगवान के चरणों में रखी हुई तुलसी की सुगंध को जब कुमारगण ने आस्वादन किया तो फिर वो भी भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। यानी कि ज्ञानी से भी महान क्या होता है? भगवान के भक्त बनना। भगवान तथा भक्तों के बीच दिव्य भाव का आदान प्रदान तब भी होता है जब भगवान भक्तों पर विपत्ति डालते हैं। अब भगवान जब विपत्ति ढाते हैं तो वो भी एक तरह से उनका प्रेम ही होता है, यानी कि वो दिखाना चाहते हैं उनको कि देखो मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम कब कभी भी मत सोचना कि ये विपत्ति तुम्हारा कुछ बिगाड़ेगी। जैसे एक बच्चा होता है, उसका पिता उसको ऊपर हवा में उछालता है, बहुत बड़ी विपत्ति है यदि ऐसा हो कि पिता हट जाए वहां से और बच्चा जमीन पर गिर जाए, तो सोचो क्या हो सकता है। परंतु पिता ये आश्वासन दिलाना चाहता है अपने बच्चे को कि देखो बेटा, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, चाहे ये कितनी बड़ी विपत्ति क्यों ना हो, मैं खड़ा हूँ तुम्हें सहारा देने के लिए, मैं तुम्हें कभी भी संकट में नहीं डालूंगा। उस तरह भगवान कहते हैं, मैं भक्तों को संकट में डालता हूँ और इस प्रकार मेरे साथ दिव्य भाव के आदान प्रदान से भक्त अधिक शुद्ध हो जाता है। क्योंकि प्रेम इतना बढ़ जाता है उस समय भक्त का भगवान के साथ कि वो प्रेम के कारण तीव्र संबंध, यानी कि जब सारे सहारे छोड़ देते हैं और भक्त अकेला हो जाता है, तो फिर उसका पूरा का पूरा आकर्षण कृष्ण की ओर जाता है और वो बहुत ज्यादा अधिक शुद्ध होता है। भक्त को भौतिक कार्यों में डालकर उसे मायामय भौतिक संबंधों से उधार करने की आवश्यकता होती है। ये भौतिक संबंध भौतिक भोग के आदान प्रदान पर आधारित हैं और यह भोग भौतिक साधनों पर निर्भर करता है। अतएव जब भगवान इन भौतिक साधनों को छीन लेते हैं, तो भक्त भगवान के प्रेम भाव की ओर शत प्रतिशत आकर्षित होता है। पहले तो भगवान भौतिक भोग देते हैं, लेकिन फिर भगवान कहते हैं भागवतम में, यस्य अहम् अनुग्रहामि हरिष्ये तद् धनं श्रेयः। जिस पर मैं बहुत ज्यादा अनुग्रह करता हूँ, उसका धन, उसका श्रेय, उसका मान सम्मान सब छीन लेता हूँ। फिर जब भक्त विवश हो जाता है, उसके पास कुछ नहीं रहता, तो फिर उसके पास केवल एक ही सहारा होता है, वो समस्त भौतिक साधनों से हटकर भगवान के ऊपर निर्भर हो जाता है। 100% शत प्रतिशत 100% भगवान की ओर आकर्षित हो जाता है। इस प्रकार भगवान पतित आत्माओं के को संहार के कीचड़ से बाहर निकालते हैं। भगवान द्वारा भक्तों को प्रदत्त विपत्तियां पाप कर्मों से उत्पन्न विपत्तियों से भिन्न है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान के भक्तों को जो विपत्तियां मिल रही हैं, वो पाप कर्मों के अनुसार उन्हें मिल रही हैं। यहाँ युधिष्ठिर महाराज को, अर्जुन को, द्रौपदी को, कुंती महारानी को, या वसुदेव जी को, या देवकी मैया को जो जो विपत्तियां मिल रही हैं, वो उनके पूर्व कर्मों के पापों के कारण उनको नहीं मिल रही हैं। भगवान की ये सारी महिमाएं जो है, वो भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों के ऊपर इन विपत्तियों के अंदर जो भक्त का भगवान के साथ स्नेह बढ़ रहा होता है, उस स्नेह को बढ़ाने के लिए और संसार को ये दिखाने के लिए कि मेरा भक्त चाहे कितने बड़े संकट में क्यों ना आ जाए, उसका कभी भी नाश नहीं होता है। संसार में आज तक प्रहलाद को, ध्रुव को और जितने भी महान महान भक्त हैं, हरिदास ठाकुर को, आज तक संसार याद करता है, क्योंकि उन्होंने विपत्तियों में भी अपना भजन नहीं छोड़ा और कृष्ण ने उनकी सहायता की। कृष्ण ने कभी भी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ा। तो भगवान की ये सारी महिमाएं ब्रह्मा, शिव, नारद, कपिल, कुमार तथा भीष्म जैसे महाजनों को ज्ञात रहती हैं, जैसा कि उल्लेख हो चुका है, और मनुष्य उन्हें उनकी कृपा से ग्रहण करने में समर्थ होता है। अर्थात जब भगवान की कृपा होती है, तभी मनुष्य भगवान को समझने का सामर्थ्य प्राप्त करता है। आगे भीष्म पितामह कहते हैं, यम मन्यसे मातुलेयम् प्रियं मित्रं सुहृत्तमम् अकरो सचिवं दूतम् सौहृदादथ सारथिम्। यम मन्यसे मातुलेयम् प्रियं मित्रं सुहृत्तमम् अकरो सचिवं दूतम् सौहृदादथ सारथिम्। यम मन्यसे मातुलेयम् प्रियं मित्रं सुहृत्तमम् अकरो सचिवं दूतम् सौहृदादथ सारथिम्। यम मन्य से मा तुलेयम, आप यम मन्य से जिनको आप सोचते हो मा तुलेयम कि ये मेरा मेरे मामा का बेटा है, मेरा ममेरा भाई है, तो प्रियम मित्रम सुहृत, उसको प्रियम है यानी अत्यंत प्रिय आप उनको समझते हो, आप अपने आप को उसका मित्र समझते हो और समझते हो कि बहुत ही सुहृत है हमारा, अत्यंत ही हितैषी है। अकरो सचिवम दूतम, अकरो मतलब आप तो बल्कि उसको अपना सचिव बना देते हो, मंत्री बना के दूत बना के उसको भेजते हो, ये कोई साक्षात भगवान है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन आप उसको क्या समझ रहे हो कि मेरा मामा का बेटा है, मेरा दोस्त है, मैं इसको सारथी बना देता हूँ कभी तो कभी, है ना, इसको सचिव बनाकर या मंत्री बनाकर दूत बनाकर उसको भेजता हूँ। और सौहृदात, सौहृदात मतलब बहुत ज्यादा हमारा ये वेलविशर है। अथ उसके पश्चात सारथी, उसको अपना सारथी भी बनाते हो, कितनी हैरत की बात है, तुम अब भगवान है उसके साथ क्या क्या करते हो। अनुवाद, हे राजन, तुम अपने अज्ञानवश ही जिस व्यक्ति को अपना ममेरा भाई, अपना अत्यंत प्रिय मित्र, अपना अत्यंत ही प्रिय मित्र, शुभहैषी, मंत्री, दूत, उपकारी आदि माना है, वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं श्री कृष्ण यद्यपि पांडवों के ममेरे भाई हैं, मित्र हैं, हितैषी हैं, मंत्री हैं, दूत हैं, उपकारी आदि बने हुए थे, तो भी वे थे तो भगवान ही, वे अहितु की कृपावश तथा अपने अनन्य भक्तों पर कृपा जताने के लिए सभी प्रकार की सेवा करते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं लगाना चाहिए कि उन्होंने परम पुरुष के रूप में अपना पद बदल दिया था। उन्हें सामान्य पुरुष के रूप में सोचना सबसे बड़ी मूर्खता है। श्री प्रभुपाद की इच्छा हो, यानी श्री प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं कि जब वो भगवान तो चाहे वो कुछ भी करें, कोई भी कार्य करें, उनको कोई बंधन नहीं लगता है, ये कार्य छोटा है, ये कार्य बड़ा है, ये हमारे लिए नीच कार्य है, ये उच्च कार्य है, बंधन तो हमारे लिए है, हम जो साधारण प्राणी है ना उसके लिए ये सब बंधन होते हैं, भगवान के लिए कोई बंधन नहीं होता। भगवान तो एक सुअर के हृदय में भी रहते हैं, गटर के अंदर, मल के अंदर जो कीड़ा रहता है भगवान उसके हृदय में भी रहते हैं, ब्रह्मा जी के हृदय में भी भगवान रहते हैं, भगवान सबके हृदय में रहते हैं। इसका मतलब ये थोड़े हुआ कि जब सुअर के हृदय में भगवान रहते हैं तो वो सुअर वाले भगवान गंदे हो गए, वो तो भगवान कभी भी अपनी वास्तविक स्थिति से नीचे नहीं गिरता। जैसे नीति शास्त्र कहता है कि अगर गरुड़ है वो गरुड़ ही है, वो भले चाहे जितना भी नीचे बैठा हो, पहाड़ के नीचे बैठा हो, और फिर भी वो गरुड़ ही रहेगा। ऐसा नहीं कि वो पहाड़ के नीचे आकर कौवा बन गया, या एक कौवा है वो अगर पहाड़ के शिखर पर बैठ गया तो वो गरुड़ बन गया। जो जिसका जो स्टेज है वो तो कभी भी कम नहीं होता है ना। जैसे सूर्यदेव वो पवित्र है, वो अपनी सूर्य तपिश से जो मल पड़ा होता है, जो गंदगी पड़ी होती है उसको भी सुखाते हैं, उस पर भी उनकी सूर्य की किरणें आती हैं, और जहां पर बाग होता है, फल होते हैं, फूल होते हैं, वहां पर भी उनकी किरणें जाती हैं। तो सूर्यदेव ये नहीं सोचेगा कि भाई ये वाली तो मल मूत्र वाली गंदी जगह है, यहां से मैं जल्दी जल्दी हट जाऊं वरना मैं खराब हो जाऊंगा, या फिर भाग वाली जगह पे या अच्छी फ्लावर वाली जगह में जहां पर फूल होंगे, सुगंध होगी, वहां पर बोले हाँ यहाँ पर मैं रखूंगा, रहूंगा तो मैं पवित्र हो जाऊं। नहीं, सूर्य की स्थिति कभी नहीं बदलेगी, चाहे वो कहीं पर भी हो सूर्य सूर्य रहेगा। जिस तरह से गंगा तो गंगा ही होगी, चाहे कितनी उसके अंदर नदियों का पानी आए, नालियों का पानी गिरे उसके अंदर, तो वो जो पानी उसके अंदर गिरेगा तो ऐसा नहीं होगा कि गंगा जो है वो अपवित्र हो जाएगी या नाली वाली गंदी गंदा पानी हो जाएगा उसका, नहीं, बल्कि जो नालियों का पानी उसके अंदर गिरेगा वो भी गंगा के साथ सानिध्य होने के कारण पवित्र हो जाएगा। तो कृष्ण चाहे सारथी बनते हैं, चाहे माखन चोरी करते हैं, या चाहे रण छोड़कर भाग जाते। अब देखो यहाँ पर कोई साधारण व्यक्ति यदि रण छोड़कर भाग जाएगा तो सब लोग उसका उपहास करेंगे ना कि ये कैसा है, देखो कायर है, भीड़ू है, छोड़कर भाग गया, ये तो बहुत ज्यादा नपुंसक है, ये तो युद्ध छोड़ के भागे। लेकिन वही कृष्ण जब युद्ध छोड़ के भागते हैं तो कृष्ण को कोई नहीं बोलता कि वो कायर है। जो वास्तव में ज्ञानी है वो क्या बोलेंगे, ये रण छोड़ राय है। द्वारिका में कौन से राय रण छोड़ से, यानी कि उनके लिए सिर्फ भजन। अब देखो साधारण व्यक्ति कोई चोरी करेगा तो उसको क्या बोलेंगे कि चोर है ये, लेकिन कृष्ण जब चोरी करता है तो सारे उसके भक्त ये इच्छा करते हैं कि काश हमारे घर में भी आकर माखन चोरी करे, है ना। सारे बल्कि उस माखन चोरी के स्वरूप को याद करते हैं, प्रेम से भजन बनाते हैं, गाते हैं। तो कृष्ण जो भी करता है तो उसका पथ नीचे नहीं गिरता, ऐसा नहीं है कि कृष्ण के कार्य के कारण उसका पथ नीचे गिरता है। वो भले सारथी बनते हैं, चाहे झूठे ताम उठाते हैं, चाहे भीष्म पितामह को प्रणाम करते हैं, चाहे उनके चरणों की सेवा करते हैं, चाहे जो भी करते हैं, कृष्ण अपनी स्थिति से कभी नीचे नहीं गिरते। मतलब कृष्ण किसी भी कार्य से अपनी स्थिति से चेंज नहीं होते। अगर वो सारथी बनते हैं तो भी वो वही कृष्ण है, अगर उनकी अग्र पूजा होती है तो भी उनका पद नीचे, ऐसा नहीं सारथी बनने से वो छोटे हो जाएंगे या फिर अग्र पूजा करने से उनका पद बड़ा हो जाएगा, नहीं। वो कृष्ण भगवान है, ऐशव भगवान साक्षात, वो भगवान ही रहेंगे चाहे वो कुछ भी करें। और भीष्म पितामह आगे हमें कहेंगे कि मेरी एक ही इच्छा है कि यूं ही हंसते रहे, मेरे सामने खड़े रहे, अपने पीताम्बर को ऐसे ही फेराते रहे, मंद मंद मुस्काते रहे और इनको देखते देखते मेरे प्राण निकल जाए। ये सब भीष्म पितामह आके हमें बताएंगे। कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।